तीसरा अध्याय, शैलेंद्र साम्राज्य का उत्थान और पतन। पहला, शैलेंद्र साम्राज्य के इतिहास की सामग्री। मलेशिया, इंडोनेशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया के अनेक प्रदेशों में जो बहुत से भारतीय उपनिवेश व राज्य ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में स्थापित हुए थे, 8वीं सदी में उनकी पृथक व स्वतंत्र सत्ता कायम नहीं रह सकी थी। वे सब प्रायः एक शक्तिशाली साम्राज्य की अधीनता में आ गए थे, जिसके राजा या सम्राट शैलेंद्र वंश के थे। जिस प्रकार भारत के प्रतापी गुप्तवंशी सम्राटों ने अन्य बहुत से राजाओं को जीतकर या उसे अधीनता स्वीकार करा के एक सुविस्तृत गुप्त साम्राज्य का निर्माण किया था, वैसे ही शैलेंद्र वंश के राजाओं ने मलाया, सुमात्रा, जावा, बोर्नियो आदि को जीतकर एक ऐसे विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी जिसमें दक्षिण पूर्वी एशिया के प्रायः सभी प्रदेश व द्वीप अंतर्गत थे। कुछ समय के लिए तो वियतनाम का चंपा राज्य और कंबोडिया का कंबुज राज्य भी शैलेंद्र राजाओं की अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश हुए थे। शैलेंद्र राजाओं की सामुद्रिक शक्ति बहुत अधिक थी। जल सेना का प्रयोग करके ही वे दक्षिण पूर्वी एशिया के सैकड़ों द्वीपों को अपनी अधीनता में लाने के समर्थ हुए थे। उधर दक्षिणी भारत के चोल वंशी राजा भी समुद्र पार के प्रदेशों में अपने प्रभुत्व का विस्तार करने में तत्पर थे। परिणाम यह हुआ कि 11वीं सदी में शैलेंद्र और चोल राजाओं में संघर्ष का सूत्रपात हुआ, जिसके कारण शैलेंद्रों की शक्ति को बहुत धक्का लगा। बाद में दक्षिणी भारत के पांड्य राजाओं तथा सिंघल लंका से भी शैलेंद्रों के युद्ध हुए। दक्षिण पूर्वी एशिया का यह साम्राज्य प्रायः 14वीं सदी तक कायम रहा, यद्यपि 12वीं सदी के बाद उसकी शक्ति में बहुत कमी आ गई थी। दक्षिण पूर्वी एशिया के प्राचीन इतिहास में शैलेंद्र साम्राज्य का स्थान अत्यंत महत्व का है। उसे इस क्षेत्र का गुप्त साम्राज्य कहा जाता है, पर शैलेंद्र वंश के प्रतापी सम्राटों का क्रमबद्ध वितरण अब तक उपलब्ध नहीं हो सका है। उनके विषय में जो भी जानकारी हमें है वह अत्यंत अस्पष्ट और अपर्याप्त है। इन सम्राटों की राजधानी तक के विषय में अभी विद्वानों में एक मत नहीं हो सका है। जिस ऐतिहासिक सामग्री के आधार पर शैलेंद्र साम्राज्य के इतिहास को जानने का प्रयत्न किया गया है, उसे तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला, उत्कीर्ण शिलालेख, दूसरा, अरब लेखकों के वृत्तांत और तीसरा, प्राचीन चीनी इतिहासों में विद्यमान विवरण। पहले इन तीनों पर संक्षेप के साथ प्रकाश डालना उपयोगी होगा। उत्कीर्ण शिलालेख। पहला, जावा के जुग जाकर्ता प्रदेश के कालसन नामक एक गांव से एक शिलालेख मिला है, जिसे शक संवत 775 ईस्वी में उत्कीर्ण कराया गया था। अभिलेख संस्कृत में है और उसकी निम्नलिखित पंक्तियां विशेष महत्व की हैं। राज्य प्रवर्धमाने राज्ञ शैलेंद्र वंश तिलकस्य शैलेंद्र राजगुरु विस्तार भवनम कृतम कृति भी शक नृपकालात तीतय वर्ष सतह सप्त भीमर्ष हाराज अक्रोध गुरु पूजार्थम तारा भवनम पनम करण ग्राम काल सनाम दत संध्याय धृतवा। इस अभिलेख के अनुसार शैलेंद्र वंश तिलक राजा की समृद्धशाली राज्य में शैलेंद्र राजाओं के राजगुरुओं द्वारा तारा मंदिर का निर्माण कराया गया था। शैलेंद्र महाराजा पनम करण ने 700 शक संवत में अपने गुरु के सम्मान में गुरु पूजार्थम एक तारा मंदिर बनवाया और कालस नामक गांव बौद्ध संघ को दान में दिया। इस अभिलेख में महाराज पनम करण द्वारा भावी नृपतियों से भी यह प्रार्थना की गई है कि वे इस बिहार के परिपालन में सदा तत्पर रहें। कालसन के इस शिलालेख द्वारा इस बात में कोई संदेह नहीं रह जाता कि शैलेंद्र वंश के राजाओं का शासन जावा पर भी विद्यमान था और ये राजा बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। जावा के जोग जाकर्ता प्रदेश के केलरुक नामक स्थान से एक अन्य अभिलेख प्राप्त हुआ है, जो स्पष्ट न होने के कारण भली भांति पढ़ा नहीं जा सका है। इसे शक संवत 704 में उत्कीर्ण कराया गया था। इस अभिलेख में सबसे पूर्व बौद्ध धर्म के रत्नत्रय बुद्ध धर्म और संघ के प्रति सम्मान प्रकट किया गया है और फिर वैर वरीवर विमर्दन और सब दिशाओं के राजाओं को जीतने वाले शैलेंद्र वंश तिलक राजा इंद्र धर्मेंद्र का उल्लेख कर यह बताया गया है कि उसका गुरु कुमार घोष था, जो गौड़ देश का निवासी गौड़ द्वीप गुरु था। इस राजगुरु कुमार घोष द्वारा मंजूश्री की मूर्ति प्रतिष्ठापित की गई थी और राजा द्वारा यह अनुरोध किया गया था कि भावी नृपति इस धर्म सेतु की रक्षा के लिए सदा तत्पर रहें। अभिलेख के अंत में श्री संग्राम धनंजय नामक राजा का भी उल्लेख है और यह कहा गया है कि उस द्वारा राजगुरु ने सत्कार ग्रहण किया था। श्री संग्राम धनंजय राजा इंद्र का उत्तराधिकारी था, यह भी इंद्र का ही नाम था, यह स्पष्ट नहीं है। पर केलरुक के इस अभिलेख से यह सूचित होता है कि शैलेंद्र वंश के राजा बड़े प्रतापी थे। शत्रुओं का विनाश करने में उन्होंने अनुपम पराक्रम प्रदर्शित किया था और चारों दिशाओं में उन्होंने विजय यात्राएं की थी। तीसरा, मलाया प्रायद्वीप में लिगोर नामक स्थान से एक अन्य अभिलेख मिला है जो शक संवत 677 का है। वस्तुतः ये दोनों अभिलेख हैं जो एक ही प्रस्तर खंड पर उत्कीर्ण हैं। पहले अभिलेख में श्री विजेंद्र राज की प्रशस्ति के अनंतर यह कहा गया है कि श्री विजेंद्र भूपति ने ईंटों से 3 बौद्ध मंदिरों का निर्माण कराया और राजा के आदेश से राजस्थवीर राजगुरु जयंत ने 3 स्तूप बनवाए। जयंत की मृत्यु के पश्चात उसके शिष्य व उत्तराधिकारी अधिमुक्ति ने ईंटों के पुराने 3 चैत्यों के समीप 2 नए चैत्य बनवाए। अंत में श्री विजय नृपति की देवेंद्र के साथ तुलना कर उस द्वारा 676 शक संवत में एक स्तूप का निर्माण कराने का उल्लेख है। दूसरे अभिलेख में एक श्लोक तो पूरा है और दूसरे श्लोक के केवल कुछ अक्षर ही हैं। यह विष्णु नामक विषण वाक्य राजा धीराज की प्रशस्ति के रूप में है। यह राजा धीराज शैलेंद्र वंश का था। यह इस अभिलेख में आए इन शब्दों में प्रकट है, शैलेंद्र वंश प्रभु निगदतः। साथ ही इस अभिलेख में शैलेंद्र वंश के इस राजा को महाराज नामा भी कहा गया है। लिगोर के इस अभिलेख के कारण इस बात में कोई संदेह नहीं रह जाता कि 8वीं सदी में शैलेंद्र वंश के राजाओं का शासन मलाया में भी विद्यमान था। चौथा, नालंदा बिहार की खुदाई में सन 1721 में एक ताम्रपत्र मिला था जिसमें स्वर्ण दीपाधीप महाराज श्री बालपुत्र देव द्वारा नालंदा में बनवाए हुए एक बिहार के लिए पालवंशी राजा देवपाल से कहकर राजगृह विषय जिले के नंदी वनक मनीवाटक नाटिका ग्राम तथा हस्ती ग्राम और गया विषय जिले के पालमक गांव के दान कराए जाने का उल्लेख है। ये गांव इस प्रयोजन से नालंदा के बिहार को दान किए गए थे ताकि इनकी आमदनी से चतुर्दशार्ष्य भिक्षु संघ के बलि चरु स्त्री चीवर पिंड पात शयनासना गलान प्रतमय भैषज्य आदि का खर्च चल सके। यह ताम्रपत्र राजा देवपाल के शासन के 39वें वर्ष 841 ईस्वी का है और इसमें स्वर्णद्वीप के राजा का परिचय इस प्रकार दिया गया है। आसी दशेष नरपाल विलोल मौली माला मणि युति विबोधत पाद पद्य शैलेंद्र वंश तिलको यव भूमि पाल श्री वैर विरय वीर मथना नुगता भिधान तस्या भवन्नन्य प्राक्रम शिलाशाली राजेंद्र मौली शत दुर्लीलता ऋग्य युगम सुर्णयुधिष्ठर पराशर भीमसेन कर्ण जुर्ना जिता यशा समारग्रवीर राज्ञ सोम कुलानल वयस्य महत श्री धर्मत सेतु सुता तस्या भूदवान मीनु जो क्रम हिसी तारेव तारा हवया तस्या नतस्य नरेंद्र वृंद विनम मदा पार्द्रविंदाशन सर्वो वर्वो पति गर्व खर्व नचन श्री बालपुत्रो भूत नालंदा गुणवृंद वुलचंद मनसा भक्ता च शौद्धोदने वृद्धवा शैल सरितरंग चरलाम लक्ष्मी मीमाम शोभनाम यस्तेत नारायण सौधधा मध्वल संघार्थ मृषद श्रिया नाना सद्गुणा भिक्षु संग वस्तित सत्यस्याम विहार कृत। स्वर्णद्वीप का राजा यव भूमिपाल यव भूमि जावा जावा का स्वामी शैलेंद्र वंश का शिरोमणि था और उसने वीर शत्रुओं का मथन कर कीर्ति उपार्जित की थी। इस शैलेंद्र वंश तिलक यह भूमिपाल का पुत्र समाराग्रवीर था, जिसका विवाह चंद्रवंश के श्री धर्म सेतु की कन्या तारा के साथ हुआ था। समराग्रवीर के तारा से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम श्री बालपुत्र देव था। उसने नालंदा में एक विहार का निर्माण कराया और उसके कतिपय खर्चों को चलाने के लिए पालवंशी राजा देवपाल से दूत द्वारा अनुरोध कर 5 ग्राम दान में दिलवाए। नालंदा के इस ताम्रपत्र का अनेक दृष्टियों से महत्व है। इसमें पालवंशी राजा देवपाल के समकालीन शैलेंद्र वंशी राजा श्री बालपुत्र देव का उल्लेख है, जिससे इस राजा के काल का सही सही ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही उसके पिता समाराग्रवीर तथा उसके एक पूर्वज का भी इसमें वर्णन है। शैलेंद्र वंश के राजाओं को इस ताम्रपत्र में यह भूमिपाल कहा गया है, जिससे जावा पर उनके शासन की सत्ता प्रमाणित होती है। 5वां, दक्षिणी भारत में चोल वंश के राजाओं के अनेक ऐसे अभिलेख प्राप्त हुए हैं जिनमें शैलेंद्र वंशी राजाओं का भी उल्लेख है। इनमें सबसे महत्व का चोल राजा राजराज राजकेसरी वर्मा का वह दान पत्र है जो 27 ताम्रपत्रों पर उत्कीर्ण है। यह अभिलेख संस्कृत और तमिल दोनों भाषाओं में है। इस अभिलेख से सूचित होता है कि शैलेंद्र वंश के राजा श्री मार विजयो तुंग वर्मा ने अपने पिता चूड़ामणि वर्मा के नाम पर नटपट्टन में एक बौद्ध विहार का निर्माण कराया था और इस चूड़ामणि वर्मा विहार में निवास करने वाले भिक्षुओं के खर्च को चलाने के लिए चोल राजा राजराज ने 1 ग्राम दान में दिया था। मार विजयो तुंग वर्मा को इस अभिलेख में शैलेंद्र वंश संभूर्त शैलेंद्र वंश में उत्पन्न श्री विषयाधिपति श्री विषय का अधिपति और कठाहादि पत्य मातनवन कठाह पर अपने अधिपत्य को विस्तृत करने वाला और कठाहाधिपति कहा गया है। अभिलेख के तमिल भाग में कठाहाधिपति के स्थान पर किडारत अरयन आया है, जिससे कठाह और किडार की एकता का संकेत मिलता है। कठाहाद्वीप के संबंध में इस ग्रंथ में पहले लिखा जा चुका है। मलाया प्रायद्वीप का केडाह या किड्डा कठा या किडार का उत्तराधिकारी है। राजा राजराज के अभिलेख के अनुसार शैलेंद्र वंशी राजा मार विजयो तुंग वर्मा श्री विषय का अधिपति था और उसने कठा किडार या केड्डा पर भी अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। श्री विषय की श्री विजय के साथ समता स्वीकार कर सकना असंगत नहीं है। श्री विजय की स्थित सुमात्रा में भी और इस क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण राज था, जिसके राजा अपनी शक्ति का विस्तार करने में तत्पर थे, क्योंकि मार विजयो तुंग वर्मा राजराज का समकालीन था, अतः उसका काल 11वीं सदी के प्रारंभ भाग में रखा जा सकता है। जिस प्रकार नालंदा से प्राप्त पालवंशी राजा देवपाल के ताम्रपत्र से शैलेंद्र वंशी राजा श्री बालपुत्र देव तथा उसके पूर्वजों का परिचय प्राप्त होता है, वैसे ही राजराज के दानपत्र से शैलेंद्र वंश के राजा मार विजयो तुंग वर्मा और उसके पिता चूड़ामणि वर्मा के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध होती है। राजराज के उत्तराधिकारी चोल राजा राजेंद्र चोल ने अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए दक्षिण पूर्वी एशिया के अनेक द्वीपों एवं प्रदेशों पर भी आक्रमण किए थे और कठा को जीतकर उस क्षेत्र के विविध राजाओं को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया था। शैलेंद्र राजाओं के लिए चोल आक्रमणों का सामना कर सकना सुगम नहीं था। चोल राजा राजेंद्र चोल तथा उसके उत्तराधिकारियों द्वारा समुद्र के पार दक्षिण पूर्वी एशिया के विविध द्वीपों की विजय करने का उल्लेख जिन पुराने अभिलेखों में विद्यमान है, वे भी शैलेंद्र साम्राज्य के इतिहास पर अच्छा प्रकाश डालते हैं। अरब लेखकों के विवरण। पुराने अरब लेखकों के विवरणों से शैलेंद्र वंश का कहीं उल्लेख नहीं मिलता, पर उनमें जागवक या जावक नाम के एक समृद्ध राज का वर्णन मिलता है, जिसकी स्थिति मलाया एशिया और इंडोनेशिया के क्षेत्र में थी। अरब व्यापारी सुलेमान 851 ईस्वी ने लिखा है कि कलाहवार मलाया प्रायद्वीप का के स्थल डमरू मध्य के चारों ओर का प्रदेश जावक के साम्राज्य का एक भाग है। जावक की स्थिति भारत के दक्षिण में है। कलाहबार और जावक एक ही राजा के शासन में है। इब्न उल फकीह 902 ईस्वी ने सुलेमान के विवरण को दोहराते हुए इसके साथ यह और जोड़ दिया है कि जावक के बाद दक्षिण में अन्य कोई देश नहीं है और जावक का राजा बहुत धनी व समृद्ध है। इब्न रोस्ता ने 903 ईस्वी के लगभग जावक के विषय में यह लिखा था कि उसका राजा महाराजा कहता है, पर उसे भारत के राजाओं में सबसे बड़ा राज इस कारण नहीं माना जाता क्योंकि उसका निवास द्वीपों में है। उसके समान धनी एवं शक्तिशाली कोई अन्य राजा नहीं है और न किसी की उसके समान आमदनी ही है। जावक के विषय में अरब लेखक अबू जैद हसन 916 ईस्वी ने जो सूचनाएं दी हैं वे विशेष महत्व की हैं। उसके अनुसार जावक और चीन के बीच समुद्र से एक महीने का रास्ता है जो हवा के अनुकूल होने पर और कम हो जाता है और इसके राजा को महाराजा कहा जाता है। राज का क्षेत्रफल 900 वर्ग फसंग के लगभग है। वहाँ का राजा अन्य भी बहुत से द्वीपों का अधिपति है जिसकी लंबाई का विस्तार 1000 फसंग या इससे भी अधिक है। जिन राजाओं पर वह शासन करता है उनमें से एक स्त्रीभुज श्री विजय द्वीप है। उसका क्षेत्रफल 400 वर्ग फसंग के लगभग है। 800 वर्ग फसंग का द्वीप रामी भी उसके अधीन है। अरब और चीन के आधे आध में अवस्थित कलाह का समुद्र तटवर्ती प्रदेश भी इस महाराजा की अधीनता में है। कलाह का क्षेत्रफल 80 वर्ग फसंग के लगभग है। कलाह का नगर कपूर चंदन हाथी दांत मुसव्वर रांगा आबनूस मसाले और अन्य नानाविध वस्तुओं के व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र है। इस कलाह या का बंदरगाह और उमन अरब में के बीच निरंतर सामुद्रिक यातायात होता रहता है। महाराजा का इन सब द्वीपों पर आधिपत्य है। जिस द्वीप में वह स्वयं निवास करता है वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक बहुत घना बसा हुआ है। अरब लेखक मसूदी ने 943 ईस्वी में भी जावत का वृतांत लिखा है। उसके अनुसार भारत एक विशाल देश है जो पहाड़ों से समुद्र तक विस्तीर्ण है। उसके बाद जावक की स्थिति है जिसका महाराजा बहुत से द्वीपों पर शासन करता है। महाराज का साम्राज्य अत्यंत विशाल है और उसकी सेना भी अनगिनत है। जो द्वीप इस महाराज के आधिपत्य में है तेज से तेज जहाज भी 2 साल में उनका पूरा चक्कर नहीं लगा सकता। उसके राज्य में सब प्रकार के मसाले तथा सुगंधित द्रव्य उत्पन्न होते हैं और संसार का भी राजा उसके समान धनी नहीं है। महाराज के साम्राज्य में स्त्री पूज भी सम्मिलित है और जावक के द्वीप भी। रमणी तथा उसके साथ के बहुत से द्वीप और चंपा का सारा समुद्र उसके शासन क्षेत्र के अंतर्गत है। इस संबंध में अलबरूनी का विवरण भी महत्व का है। उसने लिखा है कि इस महासागर के पूर्व द्वीप भारत की अपेक्षा चीन के अधिक समीप पड़ते हैं। जावक के इन द्वीपों को हिंदू लोग स्वर्ण द्वीप कहते हैं। जावक के द्वीप को स्वर्ण द्वीप इस कारण कहा जाता है क्योंकि वहाँ की थोड़ी सी मिट्टी धोने पर बहुत सा सोना निकल आता है। जावक और उसके शासक महाराज के संबंध में जो विवरण अरब लेखकों के ग्रंथों में पाए जाते हैं और उनसे यह स्पष्ट है कि जावक के महाराज एक ऐसे विशाल साम्राज्य के स्वामी थे जिसके बहुत से द्वीप अंतर्गत थे। जिन अरब लेखकों के विवरण ऊपर दिए गए हैं उनका काल 9वीं से 11वीं सदी तक है। इससे यह परिणाम निकाला जा सकता है कि भारत और चीन के मध्यवर्ती द्वीपों की श्रृंखला पर शासन करने वाले जावक के महाराजाओं का विशाल साम्राज्य इन सदियों में विद्यमान था। यही समय था जबकि मलाया जावा नालंदा आदि से प्राप्त अभिलेखों के अनुसार दक्षिण पूर्वी एशिया के इस क्षेत्र में शैलेंद्र वंश के प्रतापी राजा शासन कर रहे थे। अतः यह मानना असंगत नहीं होगा कि अरब विवरणों में जावक के जिन महाराजाओं का उल्लेख है वे शैलेंद्र वंश के ही थे। चीनी विवरण। चीन के प्राचीन इतिहास विषय ग्रंथों में सन फोत्सी नाम के एक राज का उल्लेख है जिसके राजाओं ने 10वीं सदी में अपने अनेक दूतमंडल चीन के सम्राट की सेवा में भेजे थे। सन 904 या 905 में इस राज की राजधानी के शासक को अनेक विध भेंट उपहारों के साथ चीन भेजा गया था और चीन के सम्राट ने उसका यथोचित सम्मान किया था। 960 ईस्वी में सन फोत्सी के राजा सी लू हु त ही ली तन से ली चे ती को अपना दूत बनाकर चीन भेजा था। अगले वर्ष 961 में सन फोत्सी के जिस राजा ने चीन में अपना दूतमंडल भेजा था चीनी ग्रंथों में उसका नाम चे ली लू ये लिखा गया है। 962 में इस राजा ने 3 राजदूत चीन भेजे और उनके साथ बहुत सी वस्तुएं भेंट उपहार में भेजी गईं। वापसी में वे बहुत सी वस्तुएं चीन से अपने साथ लाए। सन फोत्सी और चीन में राजनीतिक संबंध 11वीं सदी में भी कायम रहे। सन 1003 में सन फोत्सी के राजा से ली चू ल वू नी फू म ती अ उ हव ने अपने दूत चीन भेजे थे और सन 1008 में राजा से री माल पी ने सन फोत्सी के इन राजाओं के चीनी नामों को श्री चूड़ामणि वर्मदेव और श्री मार विजयो तुंग वर्मा के साथ मिलाया गया है। जैसा कि इस अध्याय में ऊपर लिखा जा चुका है, शैलेंद्र वंश संभुत इन राजाओं के नाम चोल वंश के अभिलेखों में भी आए हैं। शैलेंद्र वंश के ये राजा चोल सम्राट राजराज के समकालीन थे और श्री विजय तथा कटाह द्वीप के ये स्वामी थे। अतः यह निर्विवाद रूप से स्वीकार किया जा सकता है कि सन फोत्सी के जिन राजाओं द्वारा चीन के सम्राटों की सेवा में दूत मंडल भेजे जाने का विवरण चीनी ग्रंथों में विद्यमान है, वे शैलेंद्र वंश के ही थे और सन फोत्सी से चीनी लेखकों को शैलेंद्र सम्राज्य ही अभिप्रेत शैलेंद्र सम्राज्य के संबंध में जो भी जानकारी अब तक प्राप्त की जा सकी है वह इसी ऐतिहासिक सामग्री द्वारा उपलब्ध हुई है। यद्यपि इसके आधार पर इस सुविशाल साम्राज्य का क्रमबद्ध इतिहास तैयार नहीं किया जा सकता, पर जो सूचनाएं इससे मिलती हैं वे भी कम महत्व की नहीं हैं।